This message is from the Conservative Party of Canada.
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478742400.
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں 770 ایم ڈائل پر پروگرام ساز و آواز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد. جناب تقریباً آج کا ڈائل پر آپ ہمارے ساتھ 545 تک رہیں گے, اور یعنی 770 ریڈیو پر آپ سن رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک نمبر ڈائل کرنا ہے 6478724900 یا ہماری ویب سائٹ eawaz.com, یہاں پر آپ ریڈیو سن سکتے ہیں, ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تمام اسپانسرز کے نمبر ہماری ویب سائٹ eawaz.com پر مل جائیں گے. اب آپ کو نیوز اردو, انگلش اور پشتو, یہ میں تھوڑا بہت سیکھ لوں گا پشتو میں کیسے ہیلو ہائی کرتے ہیں, تو دین ویل ٹاک. تو پشتو میں بھی اب آپ خبریں پڑھ سکتے ہیں ہماری آواز یعنی ای آواز ریڈیو اور ٹی وی پر. چلیں جناب, میں تو ویسے ساری خبریں سنا چکا تھا آپ کو, لیکن پھر بھی شازیہ ملک صاحبہ اپنے 4 فالوورز کے ساتھ خوش آمدید ہے, عزت ماب, حد ادب. آئیے بینڈ بجاتے ہیں ان کے لیے, مطلب ان کے لیے, اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لڑ شفی خبر تک مستور مالا روڑا, تزا تزا گلور درسلور مالا روڑا.
تقریباً اس دھرتی پہ نا کو 150 لوگ ہیں
ڈبلیو ایس کیسے ہو
جنہیں اس کے آگے پشتو آتی نہیں ہے, اس کے آگے نہیں آتی.
دیکھو بھائی, میں نے تو بہت ساری بول دی ہے. ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا دوسرے کے ساتھ, اس نے کہا تمہیں رشین آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہتا ہے بولو, کہتا ہے میخائل گورباچوف.
یہ بھی صحیح ہے,
کچھ لوگوں کو تو
یہ بھی نہیں آتی.
ہم نے تو بہت زیادہ پشتو بول دی ہے.
جو پشتو سننے والے سمجھنے والے وہ رو رہے ہیں اس وقت کہ شازیہ ملک نے
نہیں, مجھے اور
اتنی پشتو بول دی,
مجھے اور بھی
بہت بول دی آج کے لیے, بہت بول دی. ایک سال ہی ایک ساتھ بول دی.
اب یہ سارا تم پریکٹس کرو پورا ریسٹ آف دا ایئر.
نہیں, میں تو اے آئی کے ٹیکنالوجی ہے, میں سارا فیچر
ٹیکنالوجی نہیں ہوتا,
اردو میں سمجھ لوں گا یا انگریزی میں سمجھ لوں گا. تو
اچھا اچھا اچھا,
تو چلیں جناب
خبروں. تو یہ تم آج تم تو کہہ رہے ہو کہ بڑے وہ مارک کارنی مارک, تو یہ پھر یہ کنزرویٹو کا کلر پہن کے تم کیوں
جلانے کے لیے آپ کی 26% ریٹنگ ہے. یہ دیکھیں میسج لاؤڈر میسج ہونا چاہیے. سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ فرض کر لیں کہ میں لبرل سپورٹ ایگزامپل لے لیتے ہیں, وہ لال کلر پہننا چاہیے. نہیں, سم ٹائم آپ بلو پہنے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے.
لیکن تم تو کہہ رہے ہو کہ جو ہے وہ لبرل جیت رہا ہے.
ہاں تو جیت آج آپ کے پاس خبروں میں ہوگی, آپ سے زیادہ خبریں پڑتی ہیں مجھ سے زیادہ.
یہ تو میرا نیریٹو ہے کہ کنزرویٹو جیتیں گے. تم تو ہمیشہ سے کہہ رہے ہو کہ لبرل جیتیں گے.
ہاں تو وہی تو 40% کس کا آیا؟
وہ لیڈر کا آیا, وہ پارٹی کا نہیں آیا. سمجھ آئے؟
پارٹی
نادان نادیا.
میری بات سن لیں, اب عامر احمد ہے, اگر وہ پارٹی میں کہیں اس کی پاپولرٹی ہے تو پارٹی بھی جیتے گی نا.
ضرور, ضروری نہیں ہے
وہ جیت جاتی ہے. یہاں ایسی ابھی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کون کیسے جیتا, مطلب وہاں کیا ہوا, کس کو ووٹ پڑا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. دیٹس اٹ, سمپل. آئی ریسٹ مائی کیس مائی لارڈ, تھینک یو ویری مچ.
نہیں نہیں, ابھی آپ دیکھنا پھر.
دیکھیں آپ کی لاٹریاں کھلتی ہیں چھوٹی چھوٹی.
اچھا,
$10 نکل گیا, $20 کافی لے لی جا کے, بیگر لے لیا, ختم ہو گئی کہانی. کنزرویٹو جیتیں گے, وہ آپ کی وہاں کھل گئی.
ٹھیک ہے, اوکے.
ابھی آپ دیکھیں, صبر کریں. میں نے کہا ایک چوکا اور ایک
اصل میں تم نے کینیڈا میں ہمارے لیے پیسے رہنے نہیں دیے. سارے $7 million تم نے خود جمع کر لیے اپنے پاس, تو ابھی ہمیں ہم بچاروں کو تو چندی چوریاں ہی ملنی تھی نا.
آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور آزاد ملک میں ہی رہ رہے ہیں, یعنی جب ہم پیدا ہوئے تو آزاد ملک میں پیدا ہوئے پاکستان, اور جہاں ہم رہ رہے ہیں وہ بھی آزاد ملک ہے. تو آپ بھی کر لیں,
کیا کریں بھیا,
بینک لوٹ لیں.
ये देख लो, अब अगर जो भी देखो जी ओपीपी कोई भी बैंक लूटा गया तो आपको पता है, ये देखें ये मेरा इशारा देखें किस तरफ है, ये जो भी कोई लूटा जाएगा इसमें ये शख्स
मेरा कसूर है,
ये शख्स इन्वॉल्व पाया जाएगा।
मैं ठीक हूँ,
ठीक है जी,
मैं कर लूंगा,
कर लोगे कोई जुगाड़ कर लोगे,
घूस घूस
अच्छा
घूस
दे देना, ठीक है, चलो जी। प्रोग्राम इज बींग ब्रॉट टू यू बाय पायल ज्वेलर्स, असलम भाई होते हैं, आपका कोई भी ओकेजन है आप जाइए उनके पास और बहुत जबरदस्त किस्म के वो देते हैं आपको जो है वो पैकेजेस, यानी कि पैकेजेस इन अ सेंस के बहुत जबरदस्त जो ज्वेलरी है उसके ऊपर आपको अगर आप 770 का नाम लेंगे तो आपको जाहिर है कि अच्छी डील वो देंगे, ठीक है जी। दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान सबसे वो लेकर आए हुए हैं ज्वेलरी, बड़े जबरदस्त डिजाइन है, आप जरूर विजिट कीजिए। और अगर आपको अच्छा खाना खाना है, आज वीकेंड है, विलेज टेस्ट पर जाइए, फैसल चढ़ा साहब के दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक मिसेस आगा में एक ओकविल में, बहुत ऑथेंटिक और अच्छे खाने हैं, क्योंकि कुकिस जो हैं वो लेकर आए हैं पाकिस्तान से, हैं जी, कुक्स यानी कि पाकिस्तान से लाएं तो आपको मजा आने वाला है, वहां पे आप जाइए। और अगर आप चाहते हैं आपका ट्रक फिराटे भरे और एक गेट से अंदर जाए और दूसरे से 15 मिनट्स में बाहर और साथ ही एंटर हो जाए यूएस, तो फिर आप नेपनी की लोकेशन पे जाएं क्विक ट्रक ल्यूप पे, और आपको बहुत जबरदस्त वो भी ऑथेंटिक ऑयल्स जाते हैं, कोई दो नंबर काम नहीं वो करते, इवन जब पेंडेमिक था तब भी सस्ते तेल नहीं ले रहे थे वो, तो बहुत हाई एंड उनके पास काम रहता है, आप उधर जाएं। और अगर आपको ना फटने वाले कपड़े चाहिए तो फिर आपने कहाँ जाना है, फिर आपने सिर्फ सफीर अहमद पे जाना है, ठीक है जी, वहां पे आप जाएं। और ब्रिटानिया रोड पे नया उनका खुला है आउटलेट, बहुत जबरदस्त इटालियन वुन के कपड़े तो आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जी, टूडो साहब की खबर सुना दूं, सैकड़ों ही आज लोग आए हुए थे समिट में जो टूडो साहब ने की है, जिसमें कि वो कहते हैं जी वी वॉन्ट टू बॉल्स्टर द इकोनॉमी, क्योंकि अभी भी जो खतरा है यूएस टैरिफ्स का वो ढला नहीं है, तो वो कह रहे हैं जी कि इनके साथ डील करने के लिए हमको बातचीत करनी है। आज यहां पे बहुत सारे इनके ट्रेडिंग पार्टनर्स और बहुत सारे और लोग थे जिनके साथ टूडो साहब ने बात की। टूडो साहब ने कहा जी कि दो चीजों का हमको बहुत ख्याल करना पड़ेगा, एक टेक्टिकल चीजों का, एक स्ट्रेटेजिक चीजों का। तो टेक्टिकल चीजों में यह है कि कनेडियंस को पता होना चाहिए कि हम यूएस टैरिफ्स कैसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर यूएस हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा देता है तो फिर कनाडा को बिल्कुल रेडी रहना चाहिए कि वो इनसे कैसे निपटे और कनेडियंस को कैसे सपोर्ट करे। जूडो ट्रंप साहब ने बड़ा क्लियर लिखा है कि नेक्स्ट मंथ, यानी कि जाहिर है अभी उन्होंने वन मंथ की एक्सटेंशन दी है, उसके ऊपर हम देखेंगे कि फाइनल डील हमको कनाडा के साथ कैसा स्ट्रक्चर करना है। तो उस पर उन्होंने कहा जी कि मैंने एक स्टडी का भी ऑर्डर दिया है कि आप कनाडा पे करो उसके साथ जो ट्रेड टाइज हैं, और ये जो है इसका स्टडी आएगा इनके पास अप्रैल 1 को। ये जो समिट आज टूडो साहब ने जिससे एड्रेस कर रहे थे उसको होस्ट किया था गवर्नमेंट की जो न्यूली क्रिएटेड एडवाइजरी काउंसिल है ऑन कनाडा यूएस टाइज, इसके अंदर बिजनेस, लेबर, इंडिजिनस लीडर्स थे, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स थे और बहुत सारे फेडरल कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी थे जो इसको अटेंड कर रहे थे। उसके बाद एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी हुआ टूडो साहब के साथ और एडवाइजरी काउंसिल के साथ, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे फ्रॉम कनाडा चेंबर ऑफ कॉमर्स, ग्लोबल ऑटोमेकर्स, फेडरेशन ऑफ कनेडियन म्यूनिसपैलिटीज, कनेडियन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर्स और नेशनल चीफ ऑफ फर्स्ट नेशंस, इन सब ने क्वेश्चन किए फिर जो है टूडो साहब से, तो ये इसके ऊपर जो है उन्होंने बातें की। मार्क कार्नी साहब जो हैं जी वो ट्रंप से बात करने के लिए बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू पीए पॉलीएफ साहब, और इसी तरह जो है वो आगे हैं क्रिस्टिया फ्रीलैंड और करीना गूल से भी। ये नैनोस का एक नया रिसर्च पोल आया है जिसमें 2 in 5 यानी कि 40% ने कहा कि ट्रंप से बात करने के लिए बेस्ट आदमी मार्क कार्नी है, पॉलीवर के लिए 26% सपोर्ट थी, 13% फॉर क्रिस्टिया फ्रीलैंड, 1% फॉर करीना गूल, 12% अनश्योर थे, 9% ने कहा जी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह 3 in 5 यानी कि 58% उन्होंने कहा जी कि अगर यूएस हम पे टैरिफ्स लगाता है तो कनेडियंस को इमीडिएटली रिटेलिएट करना चाहिए, और कुछ ने कहा जी कि कनेडियंस को वैसे निगोशिएट करना चाहिए। अगर जो निगोशिएट करने वाले थे उनमें 21% थी उनकी, लेकिन वो लोग जो कि कह रहे थे कि नहीं अगर वो टैरिफ्स लगा दें तो अगर आपने यूएस के वाइन, बियर और लिकर से आपने पुल आउट करना है, तो 78% इस मुद्दे को सपोर्ट कर रहे थे, 10% कह रहे थे कि हम सम वट सपोर्ट करेंगे। अगर ये बात पूछी गई कि हम क्या कनाडा डॉलर टू डॉलर काउंटर टैरिफ्स लगाए तो उसको सपोर्ट किया 68% रिस्पॉन्डेंट्स ने, 21% ने कहा सम वट सपोर्ट करेंगे। कटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए कनेडियंस 51% जो थे उनकी सपोर्ट थी, 25% ने कहा हम सम वट इसको सपोर्ट करेंगे। तो ये आज जनाब ऐसा आया। इसके अलावा जो है आज फिर से लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज का सामना करना पड़ा। ऑन्टेरियो ने ये जो रिबेट चेक्स दिए थे ये अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं इसको कैश आउट नहीं कर सक रहे हैं। ये $200 का जो टैक्स रिबेट लोगों को पहुंचना था, बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि हमारे जो चेक्स हैं वो बाउंस कर रहे हैं या कि फिर क्लियर नहीं हो रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन से जब मीडिया ने कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट बिल्कुल कमिटेड है टू रिजोल्व एनी इश्यूज, और उन्होंने कहा जी अप्रोक्सीमेटली 11.45 मिलियन लोगों को पेमेंट्स जो हैं वो एज ऑफ फरवरी 6 दिए गए थे ताकि जो इनके राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें थोड़ा सा इनको सहायता मिले। और गवर्नमेंट जो है वो क्विकली काम कर रही है इसके लिए कि ये जो चेक्स हैं जो कि 15 मिलियन एलिजिबल ऑन्टारियंस को पहुंचे हैं वो जल्दी से जल्दी पहुंचे। इसके अलावा चेक्स जो हैं वो कह रहे मिनिस्ट्री ने कहा जी कि 7 days a week जो है वो प्रिंट किए जा रहे हैं ताकि हर किसी को फौरन मिले। मिनिस्ट्री को जब बताया गया कि लोगों को बड़े इश्यूज आ रहे हैं इसमें तो उन्होंने कहा हां हमको कुछ प्रिंटिंग इश्यूज के बारे में पता है जो हमने ये खबर आपको पहले भी दी थी, और उन्होंने कहा जी कि लेकिन फिर भी इसमें 0.002% ऐसे लोग हैं जिनको चेक्स मेल किए हैं और वो अफेक्टेड हैं और वो नहीं हो रहे हैं कैश आउट, तो उसके ऊपर मिनिस्ट्री काम कर रही है। नैनोज का एक और भी रिसर्च जो है वो पोल आया है उसके मुताबिक जो पीसी पार्टी है वो सबसे ज्यादा जो है वो लीड एंजॉय कर रही है ऑन्टेरियो के अंदर। पीसी के पास 45.9% सपोर्ट है, लिबरल्स 30.1%, एनडीपी 15.7%, ग्रीन पार्टी 6.5%, 21.8% टोरंटोनियंस जो है वो कहते हैं जी कि हम एनडीपी को वोट करेंगे, यानी कि टोरंटो के अंदर जरा थोड़ा सा काम खराब है पीसी पार्टी का। जीटी के अंदर जो है पीसी काफी स्ट्रांग है और 48.9% उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लिबरल्स को 34.7%, 12.1% जो है वो जीटीए में कह रहे हैं कि हम एनडीपी को सपोर्ट करेंगे। 39% ने कहा कि जो फोर्थ साफ हैं वो ऑन्टेरियो को लीड करने के लिए हमारी टॉप चॉइस रहेगी, और बॉनी क्रॉम्बी के लिए 25.5% सपोर्ट दे रहे हैं, एनडीपी की मैरिट स्टाइल्स जो है 16.4%, अच्छा मेल्स के अंदर 53.7% जो है वो कहते हैं हम पीसी को सपोर्ट करेंगे, 24.2% लिबरल्स, 14.4% एनडीपी, फीमेल्स के अंदर 38.6% टू वोट फॉर पीसी, 35.9% फॉर लिबरल्स, 17.1% एनडीपी। और पीसी जो है वो उसके पास सबसे ज्यादा सपोर्ट है इन द एज ग्रुप बिटवीन 35 to 54, लिबरल्स के पास सबसे ज्यादा सपोर्ट है बिटवीन एज ग्रुप 55 and over। ये जो सर्वे था 900 ऑन्टेरियोज का लिया गया था बिटवीन February 6 to 6, और इसमें मार्जिन ऑफ एरर कम है इसलिए क्योंकि ये फोन पे वो जैसे जैसे पूछ रहे थे वैसे वैसे वो उसका जवाब जो थे वो लिख रहे थे। मोस्ट ऑफ द ऑन्टेरियन आज जो पार्टी के लीडर्स थे वो नॉर्दर्न पार्ट्स में थे प्रोविंस के। डकफोर्ड साहब जो थे वो आज ट्रोनो में रहे और उन्होंने कहा जी कि मैं एक जो है यहां पे काफी मेजर अनाउंसमेंट्स किए हैं, इसके साथ एक जो है कोई हाईवे वगैरह भी जो है उसकी भी बात इन्होंने की है। मैरिट स्टाइल्स जो है उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स जो है सूल दी मरी में किए हैं, और एक फिर उसके बाद इन्होंने जाके विंटर फेस्टिवल जो है वो अटेंड किया। बॉनी क्रॉम्बी जो है वो थंडर बे में थी, ग्रीन पार्टी के लीडर माइक श्राइनर जो है वो पेरी साउंड में थे। फोर्थ साहब जो है उन्होंने फिर मुलाकातें की वर्कर्स यूनियन के साथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी एज वेल। ऑपोजिशन ने आज बहुत क्रिटिसाइज किया फोर्ड साहब को क्योंकि जो इनके ऊपर लॉ सूट अलेज किए गए थे कि दो फॉर्मर गवर्नमेंट स्टाफर्स जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे, ये जो रियल एस्टेट रीजोनिंग स्कीम थी वही जो आपको पता ना ग्रीन बेल्ट का सारा मसला था। फोर्ड साहब ने कहा जी मुझे इस तरह की मैंने कोई ना बात सुनी है ना मुझे मालूम है ना मैं इसमें इन्वॉल्व हूं, तो मतलब अपने कम नल कम रखो ठीक है जी। ऐसे आज यूएस जो है उसने अनाउंस किया जी फॉर द फर्स्ट टाइम जब से ट्रंप साहब आए हैं द फर्स्ट बैच ऑफ सैंक्शंस आज ईरान के लिए उन्होंने इम्पोज कर दी हैं, और उन्होंने कहा जी कि हम मैक्सिमम प्रेशर जो है वो तेहरान के ऊपर देना चाहते हैं। यूएस ट्रेजरी जो है उसको हुक्म दे दिया गया है और उसने कहा जी कि हम ये सैंक्शंस जो है ईरान के ऑयल नेटवर्क के ऊपर लगा रहे हैं। आपको पता ही हमने आपको परसों भी बताया था कि ईरान के जो है लीडर्स और उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं ओपेक से भी बात कर रहे हैं और दूसरे कुछ दुनिया में लीडर से भी बात कर रहे हैं कि अमेरिका को ये जो चीज है इस पे यूज न करने दिया जाए, हमारे ऑयल को ना छेड़ने दिया जाए, लेकिन आज जी उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए। उन्होंने कहा जी हम टारगेट कर रहे हैं फॉरेन शिप्स इंडिविजुअल्स और वो सारी कंपनीज जो कि इसके साथ डील कर रही हैं। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेट जो है उन्होंने कहा जी इरानियन रिजीम जो है वो अपने ऑयल से पैसे कमा के अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला रहे हैं और डेडली बैलिस्टिक मिसाइल्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कर रहे हैं और टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। यूएस जो है वो कमिटेड है कि इन सब चीजों के खिलाफ जो है जो एक्टिविटीज हैं ईरान की, इनके खिलाफ काम करेगा। ईरान ने कहा कि हम इन किसी भी चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, और उन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है वो आवाज उठाई सैंक्शन के ऊपर। ट्रेजरी बोर्ड ने बहरहाल कहा जी कि सैंक्शन इंक्लूड करते हैं बहुत सारे दूसरे भी डिफरेंट ज्यूरिस्डिक्शन भी, और इसके अंदर इंक्लूडेड हैं चाइना, इंडिया एंड इवन यूएई, क्योंकि ये लोग जो है ईरान से डील करते हैं। इसके अलावा ट्रंप साहब ने आज अनाउंस किया है कि आईसीसी के ऊपर भी मैं जो है सैंक्शन लगा रहा हूं, क्योंकि ये इसराइल और यूएसए को अब्यूज ये पार्टी करती है, और उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल हम इसके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, और जो आईसीसी का जो स्टाफ है उसको वीजा रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, क्योंकि ये लोग इन्वेस्टिगेशन बिठाए हुए हैं यूएस और उसके एलाइज यानी कि जाहिर है इसराइल के खिलाफ। इस डिसीजन के खिलाफ जो है 79 कंट्रीज ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, और जिसमें के शामिल हैं स्लोवेनिया, लक्जमबर्ग, मेक्सिको, सियरा लियोन, वनूटू, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ब्राजील, बांग्लादेश। उन्होंने कहा कि ये आईसीसी के खिलाफ इस तरह के सैंक्शन लगाने, क्योंकि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं जी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसकी हम बात कर रहे हैं। आपको पता ही है कि उसने कहा था कि हम इसराइल और उसके जो है साथी जो है उनके ऊपर हम सैंक्शन लगा रहे हैं। तो उसके ऊपर जी आज, क्योंकि आपको पता ही है कि नतन्याहू साहब अमरीका पहुंचे हुए हैं और वो बीबी जो है उसका बड़ा प्यार है उनके साथ, ट्रंप साहब के साथ, तो इसलिए ट्रंप साहब ने आज बात करी है। हमास जो है उसने आज कहा है जी कि हम इसराइल को उसके कैप्टिव्स वापस इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि 12,000 बॉडीज जो हैं वो अभी भी गाजा के रबल के नीचे दबी हुई हैं, और बहुत सारे लोग जो हमारी कैप्टिविटी में थे वो मर गए थे और रबल के नीचे हैं, क्योंकि इसराइल जो है प्रिवेंट कर रहा है हैवी इक्विपमेंट का इस एनक्लेव के अंदर एंटर होना, तो जब तक रबल नहीं हटेगा वो बॉडीज जो है नहीं निकलेंगी और पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा जी कि इसराइली कैप्टिव जो हैं अली शराबी, ओहद बेन एमी और लेवी जो है इस सैटरडे को हम उनको रिलीज कर रहे हैं इन द लेटेस्ट एक्सचेंज फॉर पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स अंडर सीज फायर अग्रीमेंट। जो सेफ एस्टीमेट्स हैं उनके मुताबिक अभी तक इसराइल ने 47,583 पैलेस्टीनियंस को मारा है, जो कि जाहिर है कि दूसरे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस नहीं मानते हैं, और इन्होंने इंजर किया है 111,633 को। गवर्नमेंट मीडिया ऑफिसर्स जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, अभी तक की जो डेथ टोल है वो 61,709 है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर मिसिंग, क्योंकि वो रबल के नीचे हैं, जब वो बॉडीज निकलेंगी तो एग्जैक्ट जो है वो डेथ टोल का पता चलेगा। इसके साथ साथ जो है बेचारे गाजंस की तकलीफ जो है बढ़ती ही चली जा रही है, इसलिए कि शदीद सर्दी है, फ्रिजिड विंड्स हैं, और जो ये लोग हैं होमलेस हैं और छोटी छोटी लकड़ियां जला के बस उसके गिर्द बैठे हुए हैं, तो लाइफ जो है थाउजेंड ऑफ होमलेस लोगों की बे इंतहा मुश्किल में है। नतन्याहू साहब ने कहा है जी कि अगर सऊदी अरेबिया हमारे साथ डील नहीं करना चाहता और उसको इतनी ही तकलीफ है, तो ये सारे पैलेस्टीनियंस जो हैं उनको ये सऊदी अरेबिया के अंदर बसा ले, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसके पास बहुत सारी लैंड है, तो वो पैलेस्टीनियंस को वहां पे बचा ले, एक बसा ले। एक इंटरव्यू दे रहे थे ये, और उस पर उनसे पूछा गया कि आपके एक सऊदी अरेबिया के साथ कैसे जो टाइज हैं नॉर्मलाइज हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सऊदी अरेबिया कॉन्स्टेंटली ये कह रहा है कि द ओनली वे फॉर दिस अग्रीमेंट इज के एक पाथवे बनाया जाए पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के लिए, और फिर हम जो है ये फॉर्मल टाइज करेंगे इसराइल के साथ। नतन्याहू ने इस आइडिया को बिल्कुल ना किया था, उसने कहा जी अक्टूबर 7 के बाद जो कुछ हमारे साथ किया गया है, आप कैसे सोचते हैं कि हम गाजा के अंदर पैलेस्टीनियंस को रहने दें विच वुड बी लेड बाय हमास, तो हमारे लिए तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं ये लोग, तो हम इनके साथ बिल्कुल नहीं रह सकते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसके अंदर ये सारी कुछ बात कर रहे थे। इनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उसके बाद सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उनसे पूछा गया, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि किंगडम का जो स्टैंस है पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के ऊपर वो बिल्कुल अनवेवरिंग और बड़ा जो है वो है प्रॉपर है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, और मिनिस्ट्री ने कहा कि हिज रॉयल हाइनेस बिल्कुल ये एम्फोसाइज करते रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूसली कोशिश करता रहेगा एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए विद ईस्ट जेरूसलम एज इट्स कैपिटल, और कोई भी डिप्लोमेटिक टाइज जो है इसराइल के साथ नहीं होंगे जब तक एक प्रॉपर पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंट स्टेट जो है उसको सेटअप नहीं करने दिया जाएगा। एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्नोफॉल हो रही है जी जापान के नॉर्दर्न मेन होकाइडो आइलैंड के अंदर, जिसने आज बहुत ज्यादा उधर डिस्ट्रप्शंस पैदा की, ट्रैफिक रोकी, एयरपोर्ट्स को शट डाउन करना पड़ा और बहुत सारी चीजें जो हैं वो नहीं लोगों तक पहुंच सकी, लोग ऑफिस में नहीं जा सके, क्योंकि ये स्नोफॉल जो है सिर्फ यहां पे होकाइडो के एरिया में नहीं है बल्कि अभी हीरो में और कुशीरो के अंदर भी है। बहुत सारे जो हैं सिटी के ऑफिशियल्स कहते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ हमको कॉल्स आए हैं कि जो ड्राइवर्स जो थे गाड़ियों के अंदर फंस गए थे स्नो के अंदर और निकाल नहीं पा रहे थे, और ये जो बहुत ज्यादा डिसरप्शन भी इसकी वजह से आई है। स्नो फेस्टिवल एक चल रहा था सपोरो के अंदर, वो भी जो टीवी फुटेज शो की जा रही है वो देख रहे हैं कि लोग कॉन्स्टेंटली स्नो को शवल कर रहे हैं और पैसेंजर्स धिक्के दे दे के अपनी गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कोई इंजरीज और मेजर डैमेज का तो रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यानी कि इससे आप अंदाजा लगाएं कि ओबी हीरो जो है वहां पे 129 सेंटीमीटर यानी कि 4 फुट स्नो जो है वो पड़ी है। मेट एजेंसी के मुताबिक 2 पावरफुल लो प्रेशर सिस्टम्स जो हैं वो जापान के अंदर दाखिल हुए हुए हैं और प्रिडिक्शंस कर रहे हैं 100 सेंटीमीटर स्नो यानी कि 3.3 फीट ऑफ स्नोफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न जापान, 50 सेंटीमीटर यानी कि 1.6 फीट मोर इन होकाइडो, और ये सिलसिला अभी कुछ और सा भी जारी रहेगा। इसीलिए अब जापान कह रहा है कि ये इंतहाई जो है आउटस्टैंडिंग किस्म का या बहुत ही यूनिक किस्म का ये जो है फिनोमिनन है, इससे पहले कभी भी इतना ज्यादा जो है बर्फ नहीं पड़ा था। उससे मतलब है कोई जितनी कनाडा में पड़ती है शायद उतनी ही पड़ती होगी, 3-3, 4-4 फुट जो है स्नो कभी भी नहीं पड़ी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा जी कि क्लाइमेट अडेप्टेशन और ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल एलूसिव रहेगी जब तक के जो अमीर नेशंस हैं वो फाइनेंशियल सपोर्ट डेवलपिंग नेशंस को नहीं देंगी, और उसके बगैर हम कोई भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। एक वीडियो मैसेज में उन्होंने जो 2-डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है क्लाइमेट पे, उसमें उन्होंने कहा जी कि हमको बहुत ही प्रिडिक्टेबल और फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा फाइनेंशियल एड का डेवलपिंग कंट्रीज के लिए टू टैकल क्लाइमेट क्राइसिस। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा जो इससे अफेक्ट होता है, less than 1% emissions जो है ये कंट्रीब्यूट करता है सारी दुनिया में, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा क्लाइमेट इसको बेटर करता है। यहां पे फ्लड्स आते हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और हीट वेव्स आते हैं और सॉइल क्रैकिंग ड्राउट्स आते हैं। उन्होंने कहा जी 2 साल पहले पाकिस्तान का 1/3 जो था वो पानी के नीचे चला गया था, 33 मिलियन लोग डिस्प्लेस थे, 1700 इनोसेंट लाइव हमने लूज की थी और $30 मिलियन का हमको लॉस सहना पड़ा था। तो उन्होंने कहा जी कि बहुत ही रोबस्ट फ्रेम वर्क ऑफ सिस्टम हमने अपने खुद के कंट्री में लेकिन बनाया है, विच इज नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2021 एंड नेशनल अडेप्टेशन प्लान 2023, लेकिन ये इनफ नहीं है। ये चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स लेना पड़ेगा और उसके लिए हमको पैसे चाहिए, है जी। तो पैसे तो हर चीज के लिए चाहिए ना। शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट जो है उनका डेलीगेशन मिला है जनाब JUIF के चीफ मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनके घर पे, और इसके ज्यादा डिटेल्स तो नहीं आए हैं लेकिन जो एक ब्रीफ स्टेटमेंट आया है उसमें बताया गया है कि ये नेशनल और पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर इनके डिस्कशन हुए थे, क्योंकि आपको पता ही है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि ये February 8 को मैंडेट चोरी होया था और हम जो है गवर्नमेंट को बोलते हैं फौरन रिजाइन करे, तो जाहिर है फिर इनको हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी इस तरह के बयान देते हैं गवर्नमेंट्स जो होती हैं सिटिंग हो जाती हैं इनके साथ, जरा इनको देते हैं फिर ये अच्छे हो जाते हैं। ये जो ब्रीफ स्टेटमेंट आया है उसमें ये भी कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने रहमान साहब का हेल्थ के बारे में पूछा और उनका शुक्रिया अदा भी किया, और उसके लिए रहमान साहब ने भी उनको थैंक यू बोला कि उनके बारे में इंक्वायर किया इन्होंने। इस मौके पे एहसन इकबाल, अताउल्ला तारड, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, मौलाना असद महमूद, असलम गोरी वगैरह जो थे सब मीटिंग के अंदर मौजूद थे। रहमान साहब ने मीडिया को बताया था पार्लियामेंट हाउस में 2 दिन पहले के पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सारे हैं और वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के लेवल पे हल नहीं हो सकते हैं, गवर्नमेंट को पॉलिटिशियंस के साथ बैठना पड़ेगा और सिस्टम जो है फंक्शन नहीं कर सकेगा अगर कुछ लोग इस सिस्टम को चलाने के बात करेंगे, तो ऐसा है। पुलिस ने रिलीज किया जी फैसल चौधरी साहब को, इमरान खान के जो लॉयर हैं, और उनको कस्टडी में लिया गया था 2 घंटे के लिए क्योंकि उनके खिलाफ ये बात आई थी कि 1 दिन पहले अडियाला जेल के जो ऑफिशियल्स हैं उनको इन्होंने अब्यूज किया था और उनके साथ कुछ जो वीडियो सामने आई उसमें वो कह रहे हैं कि तुमको ये किसने बोला है कि मुझे रोको, और ये बात ये हुआ क्या है। ये मीडिया के साथ जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी कि अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑर्डर्स मैं खान के साथ मिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन जो जेल की अथॉरिटीज थे वो मुझे मिलने ही नहीं दे रहे थे, और फिर मुझे उन्होंने एक पुलिस वाला कोई आया और उसने मुझे कहा जी आप चेक पोस्ट पे आओ। जब मैं उधर चेक पोस्ट में गया, जबकि मैं जा रहा था जेल के प्रेमिसेस से, तो बहुत ही हैवी पुलिस जो कंटिजेंट है वो वहां पे आ गया और उन्होंने कहा कि तुम खान से नहीं मिल सकते हो। और तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई तुमको किसने बोला है कि मैं नहीं मिल सकता हूं, तो वो जो अल्टरकेशन हुई है उसमें उन्होंने कहा जी तुमने बहुत ही डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज किया है, और यह वाकया तो लेकिन कल होया था, तो अभी मुझे आज क्यों उन्होंने अरेस्ट किया। बहरहाल जी वो कहते हैं जी कि अब इन्होंने मुझे डिटेन किया था और इन्होंने अब जो है एक कोर्ट ऑर्डर जो था वो जेल सुपरिटेंडेंट को व्हाट्सएप के थ्रू भेजा था, और उन्होंने कहा जी कि मेरा सिर्फ एक ही कसूर है कि मैं खान का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, और ये लोग जो हैं फिर मुझे ऐसा हरेस कर रहे हैं। चलो जी कोई अच्छी खबर भी सुना देने हैं पाकिस्तान दी। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच जो है उसने कहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल प्रोग्रेस के रास्ते पे है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहां पे आएगा, क्योंकि यहां पे इकोनॉमिक रीबिल्डिंग और एक्सटर्नल बफर्स जो हैं उससे ये निकल रहा है। तो इन्होंने पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी जो इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग है IDR को, उसको CC प्लस कर दिया है फ्रॉम CCC, क्योंकि इसका अभी पाकिस्तान का डील हो गया है IMF के साथ भी। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में बिल्कुल डिस इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स बड़े सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक का जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो भी ये शो कर रहा है कि इन्फ्लेशन नीचे की तरफ है, एंड इट इज ईजिंग टू 2.4% विच वॉज द नंबर इन जनवरी, और हौले हौले डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो पेरिशेबल गुड्स हैं उनके प्राइसेस में कमी आ रही है। इसके साथ साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा था कि हम एक पूरी पॉलिसी बना रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस में कैसे कमी लाई जाए, और जरूर हम कमी लाएंगे और हम आपको इसके बारे में जल्द ही बताएंगे। तो उसके लिए जो है ये बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छा जनाब, आज हिंदुस्तान के अंदर फिर बहुत ज्यादा हंगामा रहा, बहुत ही ज्यादा। एक तो दिल्ली के इलेक्शंस भी हो रहे हैं उसके सिलसिले में तो हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर आज, कल हमने आपको बताया था ना कि वो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज खड़े हुए थे मोर्चा निकाल के कि ये कैसे इतना बुरा सलूक किया जो इंडियंस जो हैं वहां से, उनको चेन्स पहना के और हैंडकफ्स बना के और मिलिट्री के प्लेन में लेकर। लेकिन आज दूसरा मुद्दा था, आज एक और मुद्दा था महाराष्ट्र के अंदर, आज फिर सारी ऑपोजिशन बहुत ज्यादा भड़की हुई थी। उन्होंने कहा जी कि ये वोटर लिस्टों के अंदर महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा इररेगुलरिटीज है, और जितना एडल्ट पॉपुलेशन है उससे ज्यादा वोट डलता है। यानी कि कहने का सिंपल मतलब यह है कि अगर बंदे दो हैं तो वोट तीन पड़ रहे हैं। राहुल गांधी जो है उन्होंने बहुत ज्यादा आज एक्यूज किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉर मैनिपुलेटिंग वोटर लिस्ट। आज गांधी जी कांग्रेस से शिवसेना UBT के MP संजय रनावत और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के SCP के MP सुप्रिया सूले जो थी वो आज एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में कर रहे थे। उन्होंने कहा जी महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर्स हैं, और बिटवीन स्टेट असेंबली पोल्स इन 2019 एंड लोकसभा पोल्स इन 2024 में 39 लाख वोटर्स जो थे उनको ऐड किया गया 5 महीने के अंदर बिटवीन लोकसभा 2024 इलेक्शंस एंड महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस 2024। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा जो महाराष्ट्र की एडल्ट पॉपुलेशन है वो तो सिर्फ 9.54 करोड़ है। तो गांधी जी ने कहा कि सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कमाठी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर कांग्रेस को 1.36 लाख वोट्स मिले थे दोनों दफा असेंबली इलेक्शंस में भी और लोकसभा इलेक्शंस में भी। उसके बाद 35,000 न्यू वोट्स जो हैं वो ऐड किए गए जो कि सारे के सारे जो है वो बीजेपी को दिए। तो लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी जो है उसको फिर 1.19 लाख जो है वो वोट्स पड़े थे। तो कांग्रेस ने एक इलेक्शन जीता लेकिन जो विधानसभा का इलेक्शन था फिर वो बीजेपी जीत गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये वोट्स जो है ऊपर नीचे कैसे होते हैं। बीजेपी जो है उसको ज्यादा मिल जाते हैं, हमको कम मिल जाते हैं, ये कभी ऐसे इंडिया की हिस्ट्री में नहीं हुआ। तीनों पार्टीज ने फिर डिमांड किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि फुल वोटर लिस्ट जो है उसको पब्लिश करे, और उन्होंने कहा जी कि कांग्रेस ने इनको बहुत दफा कहा है लेकिन ECI मान नहीं रही है। रनावत साहब ने 39 लाख न्यू जो ये वोटर्स हैं ये फ्लोटिंग वोटर्स हैं, ये जिधर जिधर जिस जिस स्टेट के अंदर इलेक्शन होता है ये 35 लाख बंदा जो है उधर उधर ये मूव करता रहता है और बीजेपी को वोट डालता रहता है ताकि बीजेपी जीतती जाए। इलेक्शन कमीशन का अगर कॉन्शियस डेड नहीं है तो वो इन सारे सवालों के जवाब दे, और अगर तो वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी की उसकी स्लेव बन गई है तो फिर ये दूसरी बात है। और ये जो फेक वोट्स डाले जा रहे हैं बिहार में, यूपी में और दूसरी जगहों पे, इसको ना करें। उनके नाम भी वही रहते हैं, आधार कार्ड का नंबर भी वही रहता है और ये जा के बीजेपी को वोट करते हैं उसको जिताने के लिए। इसके ऊपर राहुल गांधी ने कहा कि ये वोटर लिस्ट जो है ये कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है ईसीआई और इसको मैनिपुलेट कर रहा है। इसके ऊपर जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा जी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चूंकि स्टेक होल्डर्स है इसके अंदर, तो इसलिए हम पूरे फैक्ट्स के साथ और प्रोसीजरल मैट्रिक्स के साथ जो मुल्क में चल रहे हैं हम पूरे का पूरा जो ये लिस्ट है आपके सामने लेके आएंगे। मोदी जी जो हैं उनको इनवाइट किया है ट्रंप साहब ने टू विजिट हिम इन यूएस, तो वो जा रहे हैं अभी फरवरी 12 से 13 के बीच में इनसे बात करने के लिए। इसकी अनाउंसमेंट जो है आज जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो कि इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री कर रहे थे, तो उनको प्रेस ने बहुत ज्यादा बैश किया। उन्होंने कहा कि अभी तक ये जो 104 डिपोर्टीज आए हैं यूएस से न्यू दिल्ली के अंदर, तो उनका इतना बुरा ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है, वो कोई चोर डाकू थोड़ी है। मिश्री ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि यूएस अथॉरिटीज, जैसे कि कल एस जयशंकर ने भी कहा था कि ये उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और उन्होंने अभी तक हमको बोला है कि 487 और भी इंडियन सिटीजन जिनको के रिमूवल ऑर्डर्स दिए गए हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन इंडिया ने उनको बोला है कि अभी आप ठहरो, उनका नेशनैलिटी हमको वेरीफाई करने दो। इन द लास्ट 16 ईयर्स कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि यूएस ने 15,000 इंडियंस और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं 18,000 इंडियंस को यूएस से वापस भेजा गया है, लेकिन आम तैयारों में भेजा जाता था जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था। इस दफा जो डिपोर्टेशन हुई है वो मिलिटरी एयरक्राफ्ट में हुई है, लेकिन मिश्री साहब ने एस जयशंकर साहब की तरह इसको फिर से जो है वो एंडोर्स करते हुए यूएस की पॉलिसी का, ये उनका सिस्टम है और वो इसको नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन कहते हैं और उसके लिए मिलिट्री का एयरक्राफ्ट यूज करते हैं। जर्नलिस्टों ने पूछा तो आज तक क्यों नहीं फिर किया मिलिट्री का जो है वो एयरक्राफ्ट, उसका कुछ जवाब नहीं था। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं नहीं हम कुछ फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे हैं कि अगर फ्यूचर में कुछ डिपोर्टेशन रहेगा तो हम फिर क्या कर सकते हैं। मोदी जी जो अभी जा रहे हैं ट्रंप से मिलने के लिए, उसके ऊपर उनको बताया गया जर्नलिस्टों को कि अभी वो ट्रेड, डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी और काउंटर चाइना पॉलिसी और H-1B वीजास के ऊपर बात करेंगे। ट्रंप साहब का जो लास्ट बात हुई थी मोदी जी के साथ वो जनवरी 27 को हुई थी और उस वक्त भी इमिग्रेशन के मसले जो थे वो आए थे, जिसमें कि ट्रंप साहब ने बहुत जोर दिया था इंडिया को कि तुम अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट लो, यानी कि उनको वो डिस्करेज कर रहे थे रशिया से खरीदने के लिए। इंडिया जो है वो इसलिए भी जाके मोदी जी मिलना चाहते थे क्योंकि इंडिया बहुत कीन है कि ये जो टैरिफ्स के बात कर रहे हैं ट्रंप साहब ये उनके ऊपर कहीं नहीं लग जाए। वैसे तो इंडिया ने अपना प्लान बनाया है कि उन्होंने कहा जी कि ये इंपोर्ट टैरिफ्स जो 30 आइटम्स जिसमें के लग्जरी कार्स है, सोलर सेल्स है, केमिकल्स है, उसके ऊपर हम लगा सकते हैं, लेकिन यूएस जो है उसके साथ ज्यादा धिक्का मुक्की नहीं इंडिया कर सकता क्योंकि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस, उसका बायलैटरल ट्रेड सरपास्ड 118 बिलियन यूएस डॉलर्स इन 2023-24। इंडिया ने पोस्ट किया था ट्रेड सरप्लस उसके रहते हुए 32 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो इसलिए जो है मोदी जी जा रहे हैं ताकि चीजों को ठंडा करें, लेकिन अमेरिका जाने से पहले वो एक समिट के लिए जो एआई के ऊपर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ्रांस में हो रही है वहां पे भी वो जाएंगे और पेरिस में प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ भी मुलाकात करेंगे। आज आया है जनाब टीजर जॉन अब्राहम की मूवी द डिप्लोमैट का और जॉन अब्राहम बड़ा जबरदस्त इसमें लग रहे हैं। एक मिनट का ये टीजर है जिसमें वो इंडियन डिप्लोमैट बने हुए हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शिवम नायर, इसको लिखा है रितेश शाह ने, ये एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इसके अंदर लॉट ऑफ ड्रामा है, एक्शन है और जो जॉन है वो जॉन अब्राहम वो बहुत ही नए किस्म के स्टाइल में नजर आ रहे हैं, ऊंचे ऊंचे रखे हैं, बड़ा सॉफ्ट सा सूट पहना हुआ है और जिसमें के कहा जा रहा है कि भाई इस तरह के काम के लिए 2.5 कदम इनको दूसरों से आगे रहना पड़ता है। ये फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं टी सीरीज जॉन अब्राहम ऑफ जे ए एंटरटेनमेंट्स अलोंग विद अ लॉट ऑफ अदर्स। सोनू सूद जो है उन्होंने उनको लुधियाना कोर्ट में जो नॉन अवेलेबल वारंट्स इन फ्रॉड केस में बुलाया गया है उसके ऊपर काफी जो है सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ था। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने इनको ये ऑर्डर्स इश्यू किए थे। आज उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और एक्स के ऊपर लिखा जी कि उन्होंने सिर्फ मुझे बुलाया है एज अ विटनेस एक मैटर के अंदर। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर ये जो हाईली सेंसेशनलाइज खबर चलाई जा रही है कि मुझे फ्रॉड के केस में पकड़ा है, मुझे नहीं पकड़ा है, मुझे एज अ विटनेस बुला रहे हैं और मेरे लॉयर्स जो है इसका जवाब देंगे ऑन फरवरी 10th, हमारा स्टेटमेंट सारा क्लैरिफाई कर देगा हमारा नॉन इन्वॉल्वमेंट। लोगों की बहुत आदत हो गई है सेलिब्रिटीज को चीजों में खींचने के लिए, क्योंकि सेलिब्रिटीज सॉफ्ट टारगेट रहते हैं। फराह खान जो है उन्होंने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बातें जो हैं एक टीवी इंटरव्यू में अपने जो हस्बैंड जो हैं शिरीष कुंदर, जिनके साथ उनकी शादी को अभी 20 साल से ज्यादा हो गया, उनके बारे में की। फराह ने कहा कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इसके बारे में बहुत अच्छा नहीं था, मैं इसको बहुत हेट करती थी और मुझे लगता था शायद ये गे भी है। और उन्होंने कहा कि अब आप इसके साथ कैसे रह रही है, तो उन्होंने कहा जी अब तो मुझे आदत हो गई है, लेकिन जब इसने नया नया मेरे साथ काम शुरू किया था ये बहुत गुस्से में हो जाता था, ये बड़ा अनॉइंग था और जब गुस्से में होता था तो हमें टॉर्चर करता था बाय नॉट टॉकिंग टू अस। इन दोनों की मुलाकात जो है 2000s में हुई थी और उसके बाद जो श्रीशीष ने थे उन्होंने उनके साथ काफी फिल्मों पर काम किया, इनके लिए एडिट किया, इनका जो डायरेक्टोरियल डेब्यू था मैं हूं ना, और फिर उसके साथ जाने मन, ओम शांति ओम, 30 मार खान में दोनों ने काम किया था। दोनों की शादी जो है उसमें से इनके 3 बच्चे हैं और ट्रिपलेट साथ में ही पैदा हुए थे सारे के सारे 2008 में। तो जनाब ये हैं हमारी कुछ खबरें और हम अब आपके पास कुछ थोड़ी सी हमारी अब खेल की खबरें रह गई हैं और एक स्पेशल रिपोर्ट है हमारे पास एक जो कि हम आपको बताएंगे जो कल फरवरी 8th को एक पीटीआई का रैली होने वाला है, तो उस रैली में क्या होने जा रहा है उसकी हम आपको डिटेल्स बताएंगे। तो सारी स्पोर्ट्स की और न्यूज और जो स्पेशल रिपोर्ट है वो हम बताएंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। हम सिर्फ एक छोटी सी ब्रेक इस वक्त ले रहे हैं उसके लिए अजान मगरिब के लिए, उसके बाद जैसे ही हम आएंगे तो फिर आप हमारे साथ एक फोन नंबर पर जुड़ सकते हैं जिसकी डिटेल्स आपको आमिर
बिल्कुल जनाब फोन नंबर,
क्योंकि आमिर कहते हैं मुझे बोलने का मौका नहीं देती है तो मैं इसको बोलने का मौका दे
रही हूं। बोल रहा हूँ 6478724900, जैसा कि आपको मालूम है कि अब हम अजान के सेगमेंट की तरफ चलेंगे, उसके बाद साइन ऑफ हो जाएगा, यानी जो डायल है 775 रेडियो पर सुन रहे हैं वो साइन ऑफ हो जाएगा 545 पे, उसके बाद 6478724900 डायल करके अब आगे की यानी 6 बजे तक की खबरें, जैसे कहा कि स्पोर्ट्स की खबरें हैं, फिर उसके बाद एक स्पेशल रिपोर्ट है उसे सुनने के लिए आपको 6478724900 या हमारी वेबसाइट eawaz.com पर लॉग इन करके भी आप खबरें सुन सकेंगे और टेलीविजन भी देख सकेंगे। इसके अलावा हमारा ई आवाज टीवी तमाम आईपी टीवी बॉक्सेस पर मौजूद है, उर्दू और पाकिस्तानी कैटेगरीज में आप आसानी ढूंढकर 24/7 हमारी नसीहत देख और सुन सकते हैं। चले जनाब अजान के सेगमेंट की तरफ चलते हैं, फिर प्रोग्राम में वापस आते हैं। हमारा नंबर
416-6201-778। Ya Rab ata ho mujhko wo makhsoos roshni, Ya Rab ata ho mujhko wo makhsoos roshni, उठे जिधर निगाह मदीना दिखाई दे, उठे जिधर निगाह मदीना दिखाई दे, जागू दे, सो जाऊं
کرم ٹورانٹو گرد و نوا کے علاقوں میں اب ٹائم ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کا, تو آئیے سنتے ہیں مغرب کی اذان.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ
کریمی
سب پہ کرم ایک سا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world, in words and in music.
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں 770 پر پروگرام ساز و آواز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اور اب آپ نے خبریں سننے کے لیے 647-872-4900 647-872-4900 آپ نے ڈائل کرنا ہے. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ eawaz.com वहां पर भी जाके आप हमारा रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम ही हमारे स्पॉन्सर्स के नंबर हमारी वेबसाइट eawaz.com पर मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा ई आवाज टीवी तमाम ही आईपीटीवी बॉक्सेस पर मौजूद है, आप इसे उर्दू या पाकिस्तानी कैटेगरीज में बआसानी सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसको एक बार फेवरेट में जब आप ऐड कर लेंगे तो जनाब फिर आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमारा ई आवाज टीवी एंड रेडियो के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो उसको भी शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। तमाम ही सोशल मीडिया पे हमारे जो हैंडल्स हैं वो ई आवाज टीवी एंड रेडियो के नाम से। चले जनाब शाजिया मलिक साहब की तरफ चलते हैं न्यूज पार्ट टू। जी
हाँ जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय इंडस डेवलपमेंट फाउंडेशन। इनका आज जो है आपको डिनर है अभी थोड़ी देर में 6:30 पे अपोलो कन्वेंशन सेंटर में, और यहां पे आ रहे हैं इकरा अजीज एंड यासर हुसैन। तो अगर आपको भी इनका ये तो अटेंड करना है इवेंट और ऑफकोर्स चैरिटी में अपना हिस्सा डालना है तो आप प्लीज जरूर जाइए और इनको आज ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा जनाब अगर आपको अच्छा होम और गाड़ी का इंश्योरेंस चाहिए तो बस वन एंड ओनली राजा बादशाह जी हैं, उनके पास आप जाओ, बहुत अच्छी आपको जो है वो डील देते हैं, तो आप उनको विजिट कर सकते हैं। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने आज जो न्यूली रेनोवेटेड कद्दाफी स्टेडियम है लाहौर में उनका इन्होंने इनॉग्रेशन किया और बहुत ज्यादा तारीफ की पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की, पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की, जाहिर है वो तो करनी थी उन्होंने, और कॉन्ट्रैक्टर्स की और वर्कर्स ने जिन्होंने कि बहुत ही जबरदस्त सिर्फ 17 डेज के अंदर जो है रिकॉर्ड डे के अंदर ये रेनोवेशन किए। उन्होंने नकवी साहब को कहा कि जी ये इन वर्कर्स ने इतना अच्छा काम किया कि एज एन इंसेंटिव इनको लंदन लेके जाओ, हैं आमिर असी भी जाइए, इन्हें पहन सानू भी ले जाओ, लंदन लेके जाएं, ठीक है जी। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, उन्होंने कहा जी अभी रिसेंटली जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें बड़ी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वो, और आप पाकिस्तानियों का दिल जीत सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत के, खासतौर पर इंडिया को डिफीट करके। उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की मोहसिन नकवी की, उन्होंने कहा जी इतना बड़ा मेगा इवेंट जो है पाकिस्तान में 29 ईयर्स के बाद ये लेके आ रहे हैं, और उन्होंने बताया कि पंजाब गवर्नमेंट और पीसीबी के चीफ जो है अब वो इंश्योर करें कि बिल्कुल फूल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहां पे रहेगा। उसके बाद उन्होंने शील्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए अमंग टॉप ऑफिशियल्स जिन्होंने के बहुत जबरदस्त ये जो रेनोवेशन का स्टेडियम पे काम किया है, जहां पे के अब ट्राई सीरीज जो है ट्राई नेशन सीरीज भी शुरू होने वाली है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की टीम की ऑफिशियल जर्सी थी उसकी चैंपियंस ट्रॉफी की वो भी आज यहां पर अनवेल की गई, जिसकी क्या हमने खबर आपको 2 दिन पहले भी बताई थी कि बड़ी जबरदस्त उन्होंने जो है लोगोज और डिजाइन किया है दैट टॉक्स अबाउट द जर्नी ऑफ पाकिस्तान ओवर द ईयर्स जो है वो। पाकिस्तान स्क्वाड जो है फॉर चैंपियंस ट्रॉफी वो उसको सिलेक्शन कमेटी रिव्यू करेगी, इसका जिक्र जो है आज पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने किया और उन्होंने कहा जी कि उनका ये प्रोगेटिव है कि वो राइट चेंजेस करते हैं या सही चेंजेस या नहीं करते हैं। ट्राई नेशन सीरीज के लिए जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाला है उसके लिए उन्होंने कहा जी कि खुशदिल शाह फहीम अशरफ जो है उनको नेम किया गया है इन गुड इंटेंशन, लेकिन जो मोहम्मद रिजवान जो कि कैप्टन है वो मीडिया से आज जब लाहौर में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी कि हमने कोई बात जो है स्क्वाड में चेंजेस के बारे में नहीं की है और हमने बेस्ट टीम सिलेक्ट किया है, प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है उनके गुड परफॉर्मेंस की वजह से इन द रीसेंट मैचेस, और उसके ऊपर फिर हमने ये 15 मेंबर स्क्वाड जो है बनाया है। खुर्शीद और फहीम जो है उनको अच्छी फॉर्म में है इसलिए उनको चूज किया गया है प्लेइंग 11 के अंदर, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा अफसोस किया, उन्होंने कहा कि साइम अयूब जो हमारी टीम में नहीं रहेगा तो उसके लिए हमको काफी मुश्किलें आ सकते हैं। आईसीसी ने आज ऑफिशियल सॉन्ग चैंपियंस ट्रॉफी का रिलीज किया है विद आतिफ असलम जीतो बाजी खेल के, और इस सॉन्ग को प्रोड्यूस किया है अब्दुल्ला सिद्दीकी ने, इसके जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं एसवंद यार असद ने और अदनान धूल ने। ये जो गाना है अकॉर्डिंग टू आईसीसी ये बहुत जबरदस्त किस्म का जो है लिखा और गाया गया है, क्योंकि ये शो करता है आईसीसी का फर्वर एक्साइटमेंट इन द क्रिकेटिंग नेशंस। ये जो म्यूजिक वीडियो है ये सेलिब्रेट करती है पाकिस्तान का रिच कल्चर और दिखाती है पाकिस्तान की वाइब्रेंट स्ट्रीट्स एंड मार्केट्स एंड स्टेडियम्स एंड द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट फैंस नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट अक्रॉस द ग्लोब। उन्होंने कहा जी कि ये स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल रहेगा, ये पॉपुलर ऑडियो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया के ग्लोबली उसके ऊपर। आतिफ असलम ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि मैं क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौकीन हूं, इनफैक्ट मैं फास्ट बॉलर बनना चाहता था और मुझे पता है कि क्राउड जो है वो कितना एक्साइटेड हो जाता है, वो कितना चीयर करते हैं, कितने इमोशनल वैल्यू इस गेम के साथ जो है रिलेटेड है, और खासतौर पर मैं इंडिया पाकिस्तान के जो गेम्स हैं आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड 2 और दुनिया भी देखती है क्योंकि इस गेम के अंदर बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स और एक्साइटमेंट रहता है। उन्होंने कहा जी कि बीइंग पार्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी ऑफिशियल सॉन्ग इज स्पेशल टू मी और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जो है इस सॉन्ग की स्पिरिट के ऊपर पूरा उतरूं। इंग्लैंड जो है वो फाइनली अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगा। हालांकि आपको पता ही है कि 160 ब्रिटिश पॉलिटिशियंस जो थे उन्होंने कहा था कि बॉयकॉट करो तालिबान की रजीम जो कि कट कर रही है वुमेन्स राइट्स और उनको गेम्स भी नहीं खेलने दे रही है, तो इनके साथ बिल्कुल गेम हमको नहीं खेलना चाहिए एज अ सिंबल। इसी पी जो है यानी कि जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है उसने आज कंफर्म किया कि नहीं, ये लाहौर के अंदर जो इनका अफगानिस्तान के साथ मैच फरवरी 26 को होगा वो होगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कंसल्टेशन किए हैं यूके के गवर्नमेंट आईसीसी और ब्रिटिश प्लेयर्स के साथ भी। इसी पी के चेयरमैन रिचर्ड टॉमसन ने कहा कि हमने इंटरनेशनल जो रिस्पॉन्स था बाय क्रिकेटिंग कम्युनिटी वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट था, लेकिन हमने जो है ये सोचा है कि हम इनके साथ जो है वो गेम खेलेंगे, हम ये यूनिलैटरली ये डिसीजन नहीं ले सकते थे, हमने ईसीबी से भी पूछा है, लड़कों से भी पूछा है और कम्युनिटी से भी पूछा है, तो कम्युनिटी ने हमको बताया है कि ये जो ऑर्डिनरी अफगान है उसके लिए सिर्फ अब जो कुछ एक्साइटमेंट्स और एंजॉयमेंट के सोर्सेज रह गए हैं वो उनकी क्रिकेट टीम रह गई है, तो इसलिए वो देखना चाहते हैं अपनी क्रिकेट टीम को खेलता हुआ, तो जनाब इसलिए जो है वो खेल रहे हैं। एंड जनाब अब हम जाते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ और दिस स्पेशल रिपोर्ट इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नासिर शाह का जो ओपन माइक कफे है वो ओपन माइक कफे पे जाएं क्योंकि वीकेंड आ गया, इसलिए मैं आपको ये सारे खाने के जॉइंट्स जो है उनके बारे में बात कर रही हूं, आप उधर जाएं। वो कहते हैं जी बहुत ही ऑथेंटिक लाहौरी जो है वो शेफ्स लेकर आए हैं और जबरदस्त खाने हैं, चिकन छोले और वो सारी चीजें, तो आप उधर जाएं और आप एंजॉय का मजा ले सकते हैं जो है। और इसके अलावा जनाब अदनान अलवी साहब लाइफ टाइम ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं मैं बहुत सारे आपको इंश्योरेंस आरईएसपी आरआरएसपी देता हूं तो आप मेरे पास आओ, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के उनके पास जो है वो डील्स हैं तो आप अदनान अलवी के पास जाएं वो आपको देंगे। अच्छा जनाब ये स्पेशल हमारी रिपोर्ट जो है ये जो कल पीटीआई का रैली होने वाला है फरवरी 8 को उसके ऊपर है, ये सवाबी के अंदर अभी तक जो है ये बिल्कुल इसका कॉन्फर्मेशन आया है और प्रोटेस्ट जो है इसके अलावा उन्होंने कहा है पीटीआई ने कि तहसील और यूनियन काउंसिल के लेवल पर भी किए जाएंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आज मीडिया को इस्लामाबाद में बताया कि हम सवाबी में और बाकी फिर तहसील और यूनियन लेवल पर प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी हमारा प्लान नहीं है कि हम गवर्नमेंट या किसी के साथ भी कन्फ्रंटेशन करें या मुल्क के अंदर केओस क्रिएट करें। वो कहते हैं जी कि हमने जो आलिया हमजा थी उन्होंने परमिशन लेने की कोशिश किया था रैली का मीनारे पाकिस्तान लाहौर के अंदर, लेकिन लाहौर के डीसी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। हुआ यह था कि आलिया हमजा ने रिपोर्ट जो थी रिक्वेस्ट जो थी जब डीसी ने इनकार किया था तो लाहौर हाईकोर्ट को दिया था, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं आप जो एडमिनिस्ट्रेशन है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उससे पूछिए, तो लाहौर के जो डीसी हैं उन्होंने फिर इसके लिए ना कर दिया। लाहौर के डीसी ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि हमने डिसीजन इसलिए लिया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मेंटेन रखा जा सके क्योंकि लाहौर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, एक तो क्रिकेट मैच हो रहा है यानी कि वो जो ट्राई सीरीज हो रहा है वो है, इसके अलावा इंटरनेशनल स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस है, इसके अलावा हॉर्स एंड कैटल शो है। इसके ऊपर पीटीआई ने कहा था कि ये तमाम चीजें जो है डिफरेंट वेन्यूज पे हो रहे हैं तो हम तो सिर्फ एक वेन्यू जो कि मीनारे पाकिस्तान है उस पर करना चाहते हैं, बहरहाल डीसी साहब ने या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका इजाजत नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि थाउजेंड्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो ऑलरेडी डिप्लॉय किए गए हैं लाहौर में और इसलिए हम जो है इसकी इजाजत यहां पे नहीं दे सकते हैं। केपी की जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है पुलिस को कि किसी भी किस्म की पॉलिटिकल गैदरिंग और रैलीज जो हैं उनके साथ आपने अपने आप को नहीं जोड़ना है और आप बिल्कुल इस तरह का कोई भी इवेंट ना अटेंड करेंगे ना उसको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन इसके बावजूद केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब उन्होंने अनाउंस किया है कि हम फुल स्केल प्रोटेस्ट इस पर निकालेंगे और उन्होंने ये जो है वादा भी किया है कि हम इमरान खान को हर हाल में जेल से छुड़वाएंगे। उन्होंने कहा इससे पहले भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स जो है मैं फलांग के और डी चौक तक गया था ताकि उसका रिलीज मिल सके लेकिन वो नहीं मिल सका, और उन्होंने कहा जी कि हमारे कोई भी गवर्नमेंट के साथ अगर टॉक्स रहेंगे तो हम सिर्फ खान के डायरेक्टिव्स पे करेंगे। अब बलूचिस्तान में और सिंध में क्या हो रहा है एक छोटा सा हम आपको क्लिप सुनाते हैं, उसके बाद पीटीआई केपी के जो प्रेसिडेंट हैं जुनेद अकबर साहब वो क्या कह रहे हैं उस तरफ हम आपको लेके जाएंगे। ये सुनिए छोटा सा क्लिप, एक पीटीआई की ऑफिशियल है वो हमसे बात कर रही है और फिर हम आपको आगे लेके जाते हैं।
मैं नाजिश फातमा एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और NA216 की कैंडिडेट, जहां से मैंने इलेक्शन लड़ा था लास्ट ईयर 8 फरवरी को, और जैसा कि कल आज का जो मेरा मैसेज है वो कल के लिए है। 8 फरवरी यौम सियाह हम लोग मनाने जा रहे हैं, जो कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया था और जबरदस्ती की हुकूमत टीडीएम का टोला हमारे सरों पे मुसलत करके और पूरी कौम को बेसकून कर दिया गया। पूरी कौम के साथ जो एक जाति वाला सलूक किया गया, हमारा लीडर 2 साल से कैद में बैठा है उम्मत मुस्लिमा का अजीम लीडर इमरान खान साहब, उनकी एहलिया बुशरा भी थी, जिनके लिए हम लोग आवाज रेज कर रहे हैं कि उनको फौरी रिहा किया जाए, क्योंकि ये लोग बेकसूर है, इनको झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है। तो कल आप सब ने अपने अपने घरों से निकलना है, पुर अमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है और उसके लिए ये जो हुकूमत अभी आई है, इस हुकूमत ने कौन सा जो है लोगों के लिए काम किए हैं, ये हुकूमत जो है बच्चों को स्कूल में दूध प्रोवाइड कर रही है। तो मैं ये बात कर रही थी कि सोशल स्टडीज के बुक में मोहतरमा अपना जिक्र करवा रही हैं, मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ, अब वो तो जो है उनकी तो एक अजीम कुर्बानी है, इन्होंने तो कुर्बानियां आवाम से ली है, ये अपने जबरदस्ती जो है बच्चों के एजुकेशन में भी अपने नाम डलवा रही है। उसके बाद जो है देखा जाए कि उस दिन एक जर्नलिस्ट ने बड़ी जबरदस्त वीडियो जो है चलाई थी कि पाकिस्तान के अंदर बनाया मरियम नवाज है, वेरी सैड, अफसोस की बात है कि आप अपना नाम चलाने के लिए बच्चों के जहनों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के जहनों को जो है वो गलत तालीम दे रहे हैं। बच्चे कल को बड़े होंगे तो हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कुर्बानियां कहां गई, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद इन्होंने जो ये हेस्को का देखने इदारा, आवाम लोग खुदकुशियां कर रहे हैं उनपे, बेजा डिडक्शन, लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बाद आप देख रहे हैं फ्यूल पे इन्होंने जो उधम मचाई दी है, खान साहब 1 रुपया बढ़ाते थे तो पूरा मुल्क जो है ना मातम करने लग जाता था, रोने लग जाता था कि ये क्या हो गया, ये